Hare ययोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्योतिषदशी सीमा। इस दिवान गृह से श्री भक्ति विरांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रिंच कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन निकाय गौर प्रमाण। All glories to the assembly. All glories to the assembly. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga.
प्रोक्त
ऋषीनां सत्रवर्धनः सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीनां सत्रवर्धनः शम्याप्रास नामक स्थान इति इस प्रकार प्रोक्त कहलाने वाला ऋषीनां ऋषियों का सत्रवर्धन कार्यों को प्रोत्साहित करने वाला अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी उपाध्याय श्री सूत ने कहा वेदों से घनिष्ठतः संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को वर्धित करने वाला है। तात्पर्य ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर शम्याप्रास में व्यासदेव का आश्रम है। श्रील व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहां आध्यात्मिक संस्कृति प्रगति सर्वोपरि होती है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित की है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति समान रूप से रहती है। सारे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी एक ही जीवन लक्ष्य परमेश्वर के साक्षात से संबंधित है। अतएव जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सारे सन्यासी अपने व्यावहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान के दृष्टि से देखे जाते हैं। ओम अज्ञान किमिराम वस्य प्राणांजन सदा चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं लोभादामह्यं ददाति स्वसदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णदेवं यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश लोकिका कांता राधा कांतन मोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत जगदाधर श्रीवासवि गौरभक्तम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां पश्चिमे आश्रम पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सप्रवर्धनः। शिशुत ने कहा, वेदों से घनिष्ठतः संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को वर्धित करने वाला है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के सातवें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जहां शौनक का प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। शौनक ऋषि ने पिछले श्लोक में प्रश्न पूछा कि हे सूत, जब महान तथा दिव्य शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया? श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का पहला अध्याय ऋषियों का 6 प्रश्न है, और दूसरा और तीसरा अध्याय उन प्रश्नों का उत्तर है। 6 प्रश्नों का उत्तर, फिर चौथा, पांचवां और छठा अध्याय बतलाता है कि भागवत की शुरुआत कैसे हो गई, किसने रचा, कब रचा, क्या उद्देश्य से रचा, कैसे व्यासदेव सब ग्रंथों की रचना की कलियुग की परिस्थिति को देखकर, पर उसके बाद तृप्त नहीं हुए। तो जब चिंतन कर रहे थे, नारद मुनि का वहां आना हुआ, उन्होंने प्रश्न पूछा, व्यासदेव ने प्रश्न पूछा कि ये सब सारे ग्रंथों के रचने पर भी मैं तृप्त नहीं हूं, अब क्या किया जाए, क्यों, इसका कारण क्या है। तो नारद मुनि ने बताया कि सारे ग्रंथों में दूसरी चीजें लिखे हो, धर्मार्थ काम मोक्ष और शुद्ध भक्ति, जो बहुत जरूरी है, जो एकमात्र तरीका है भगवान को जानने का, इसका तुमने वर्णन नहीं किया है। अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें शुद्ध भक्ति के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र, सारे कैतव धर्म को यहां से हटा दो और शुद्ध भक्ति दो। एक कम से कम एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो शुद्ध चीज प्रदान करे ऐसे परमहंस लोगों के लिए, निर्मत शरणार्थी, जिनके हृदय में मत्सर नहीं है, भगवान बनने की इच्छा नहीं है, धर्मार्थ काम यही वन मुक्ति पाने की भी इच्छा नहीं, सिर्फ भगवान की सेवा करने की इच्छा, ऐसे लोगों के लिए एक शुद्ध ग्रंथ दो। और बताया भक्ति की महानता क्या है। फिर नारद मुनि ने अपना खुद का उदाहरण दिया कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, कोई योग्यता नहीं थी, और भक्तों के संग में, शुद्ध भक्तों के संग में थोड़े समय से आने के कारण और उनके दिए हुए मार्ग पर चलने के कारण उसी जन्म में मैं परिपूर्णता परम सिद्धि को प्राप्त किया, और अब मैं नारद मुनि बनकर भ्रमण कर रहा हूं। इतना शक्तिशाली भक्ति योग, डायरेक्ट भक्ति योग, कि कोई भी किसी अवस्था से अगर इसे स्वीकार करें, भक्त्यामाम अभिजानाति यावान यश्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। इस तरह से बताएं, और उसके बाद कहते हैं अंत में जाने से पहले, यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ के चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा का संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने पूछा था आत्मा का शांति कैसा मिला, आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त कैसे होगी, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। और यहां बता रहे हैं कि इंद्रियों को, काम क्रोध इत्यादियों को नियंत्रण किया जा सकता है दूसरे योग पद्धति से, पर आत्मा तब तृप्त होगी जब भगवान की स्वरूप, उसका स्थिति जो है भगवान की भक्ति में जब तक नहीं लगेगी तब तक आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो, इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है, यह तुम्हारे आत्मतोष के लिए भी लाभप्रद होगा, सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सबके लिए भी। और सुत गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा से झंकृत करते हुए वे इच्छानुसार विचरण करने के लिए चले गए। देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त विपन्न जीवों को भी चेतना प्रदान करते हैं। इस तरह से नारद मुनि ने ज्ञान दी व्यासदेव को, और वहां से वो भ्रमण करते हुए भगवान की जो मिशन, भगवान का जो उद्देश्य है इस भौतिक संसार के लिए, बद्ध जीवों का उद्धार हो, सब भगवत धाम आ जाए, उस कार्य में कार्यरत होकर वो निकल पड़े। और अब शौनक आदि का प्रश्न है, यार नारद मुनि के जाने के बाद, सदगुरु से श्रवण करने के बाद व्यासदेव ने क्या किया? ये बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, के ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम अनंत योनियों में भ्रमण करते 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 कोई एक सौभाग्यशाली व्यक्ति को एक सदगुरु का आश्रय मिलता है, सदगुरु के संपर्क में आने का मौका मिलता है। और उस मौके का लाभ हम उठाएं या नहीं हमारे ऊपर निर्भर है। और मिलने के बाद उनसे श्रवण करना और श्रवण करने के बाद उसको स्वीकार करना और उसे अपने जीवन में लागू करने के प्रयास करना, तो ये एक्चुअली परिपूर्णता है, नहीं तो फिर उसका पूरा फायदा नहीं उठाएंगे हम। तो व्यासदेव की इच्छा थी, नारद मुनि उनके जीवन में आए, उनके समस्या का हल बताया, बताने के बाद वो चले गए। और अब शौनक आदि का प्रश्न है कि उसके बाद क्या हुआ, नारद व्यासदेव ने क्या किया। इसी तरह से हमको भी भगवान की अहितु की कृपा से सद्गुरु प्राप्त हुए और हमने उनसे सुना। अब सुनने के बाद क्या करना है, तो व्यासदेव शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि व्यासदेव ने क्या किया, ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रात इति प्रोक्त ऋषिनाम सत्रवर्धन। वेदों से घनिष्ठतः संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रात नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को वर्धित करने वाला है। प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो ये 5000 साल पहले रचे हुए श्लोक जो हैं, उन श्लोकों का सार निचोड़ निकालकर आज के हम जैसे कलयुग के बद्ध जीवों, जो सिटी बंबई कोल्हापुर ऐसे सिटी में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए वही सार आज के जीवन में कैसा लागू किया जा सकता है, इसीलिए तात्पर्य समझना बहुत जरूरी। बिना तात्पर्य के ये हमारे लिए एक माइथोलॉजी, दंत कथा, आई मीन पुराण कथा, बस ये सब सात्विक मनोरंजन के लिए हो जाता है। पर ये तात्पर्य के द्वारा ये 5000 साल पहले हुए रचे हुए श्लोक आज भी हमारे जीवन में प्रकाश डालता है और रेलेवेंस इसका कैसे इसको आज के जीवन में प्रैक्टिकली लागू किया जाए वो बताता है। कभी भी प्रभुपाद आप श्लोक में, हर एक श्लोक में देखिए, एक दो महत्वपूर्ण चीज को लेते हैं, उस श्लोकों में, उस कथा में से एक श्लोकों को लेते हैं, दो तीन श्लोक शब्दों को लेते हैं और कहते हैं कि ये शब्द बड़ा मुख्य है, ये बड़ा प्रमुख है और उसका अर्थ क्या है, उसका सार क्या है और उस सार को आज हम अपने जीवन में कैसा लागू किया जाए, ये बड़े अच्छे से समझाते हैं। तो यहां व्यासदेव ने अपने सदगुरु नारद मुनि के सुनने के बाद क्या किया, समझ लिया उनकी शिक्षा क्या है, उनका उन्होंने क्या मुझे ज्ञान दिया, क्या करना है। सदगुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमको एक मार्गदर्शन देते हैं, कैसे किस मार्ग पे हमको चलना है ये बता देते हैं, बस ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा मत करो, ये बोल के चले जाते हैं। पर बोल के जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अनुकूल वातावरण करना चाहिए ताकि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में हम उतार पाए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। उपयुक्त स्थान और उपयुक्त वातावरण, हर एक चीज के लिए एक उपयुक्त स्थान और उपयुक्त वातावरण होगा तो उस कार्य को करने में अनुकूल होगा। अगर स्थान अनुकूल नहीं है, वातावरण अनुकूल नहीं है, तो कोई भी कार्य अच्छी तरह से संपन्न नहीं हो पाएगा। कोई भी कार्य आप देखिए, एक उपयुक्त स्थान चाहिए। एक आदमी को कुछ काम वाम करना है तो एक उपयुक्त स्थान चाहिए। उपयुक्त स्थान हो गया ठीक है, उतना ही नहीं, उपयुक्त वातावरण भी चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना। छात्र जीवन मतलब पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के लिए उपयुक्त स्थान चाहिए। मेन रोड के बीच में बैठेगा 10 बजे जाके ट्रैफिक के बीच में सर्कल में, जहां चार बड़े बड़े मेन रोड आते, बीच में सर्कल में बैठ के पढ़ाई करेगा, बहुत मुश्किल है। अगर वो अद्भुत छात्र हो, जीनियस कोई हो, एकाग्रचित्त कहीं भी रह जाए वो, उसके लिए ठीक है। पर उपयुक्त स्थान मतलब एक ऐसा जगह जहां सब छात्र लोग एकत्रित होते हैं, तो वो बहुत अनुकूल है। और उपयुक्त वातावरण भी होना चाहिए। अगर सब पढ़ाई कर रहे हैं तो नींद नहीं आता है। हमारे गुरुकुल का एक बच्चा बताया कि जब जहां बैठते हैं, जहां सोते हैं, उधर ही बैठना, बैठ के पढ़ाई करना शुरू करे, ज्यादा नींद आता है। पर अगर जहां सब बच्चे लोग एकत्रित होते पढ़ाई के लिए, वहां जाके बैठे तो नींद भी आएगा, तो बोलेगा सब पढ़ रहे हैं तो हमको भी थोड़ा पढ़ने का इच्छा उत्पन्न होता है। कोई भी चीज के लिए, उल्टा चीज हो या अच्छा चीज हो, दारू पीने वाले के लिए उनको भी एक उपयुक्त स्थान और उपयुक्त वातावरण चाहिए। फिर नहीं तो पीने मजा नहीं आता, पीने का इच्छा भी नहीं होता। सुबह सुबह उठ के कोई नहीं पीता। उपयुक्त स्थान होना चाहिए, सब पीने वाले होना चाहिए। तो अगर कम भी पिएगा तो बोलेगा और थोड़ा पी लेना, मैं भी तेरे को कंपनी दूंगा। अगर अच्छा पियकर बनना है तो उपयुक्त स्थान और उपयुक्त वातावरण, डिम लाइट हो और म्यूजिक भी अनुकूल हो और उसके साथ अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ हो, जो मूड उत्पन्न करे, तो फिर एक पेग पीने वाला भी एक बोतल पीता हो। मतलब कोई भी चीज उपयुक्त स्थान और उपयुक्त वातावरण हो तो उस कार्य को ज्यादा कर सकते हैं। ऑफकोर्स प्रतिकूल चीजों को नहीं, बट महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई भी चीजों को अगर कार्य संपन्न करना है तो उपयुक्त स्थान और उपयुक्त वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। तो यहां प्रभुपाद कहते हैं इसी तरह से ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। क्योंकि बिरला कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुकूल वातावरण न होते हुए भी किया हो, शायद करोड़ों में एक होंगे, पर जन साधारण के लिए यह बहुत जरूरी है कि स्थान और वातावरण अनुकूल बनाए। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर सम्याप्रास में व्यासदेव का आश्रम है। वहां उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उन्होंने देखा कि अभी नारद मुनि ने मुझे इंस्ट्रक्शन पुस्तक लिखने के लिए बोल के गए हैं, शुद्ध भक्ति का एक ग्रंथ की रचना करो, अभी वो रचना करना है तो मुझे एक उपयुक्त स्थान और वातावरण की जरूरी है। तो बद्रीनाथ अभी भी जहां है हिमालय पे, सरस्वती नदी, ब्रह्म नद्याम, ब्रह्म का चार अर्थ यहां प्रभुपाद ने बताया। ब्रह्म यानी वेदों को भी ब्रह्म ज्ञान कहा जाता, ब्रह्म कहा जाता है। फिर ब्रह्माक्षर ब्रह्माक्षर समुद्भवम, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तो ब्रह्म यानी वेद, ब्रह्म यानी ब्राह्मण, ब्रह्म यानी संत और ब्रह्म यानी भगवान। ब्रह्मेति परमात्मे इति भगवान इति शब्द थे। तो ब्रह्म नद्याम, ऐसे नदी के तट पर गए जो शास्त्रों के अध्ययन के लिए अनुकूल है। ब्रह्मणिकल, एक ब्राह्मण की प्रवृत्ति अनुकूल उत्पन्न करने वाला स्थल, संतों का वहां आगमन हमेशा होता है, वातावरण ऐसा है अनुकूल है, और भगवान की भक्ति के लिए भी अनुकूल। तो अनुकूल ऐसा ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, इसीलिए उन्होंने जाके सरस्वती नदी के तट को चुना और वहां उन्होंने आश्रमे पश्चिमे तटे आश्रमे। तो एक शब्द यहां जिसपे प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है, आश्रमे पश्चिमे तटे आश्रम। तो प्रभुपाद कहते हैं श्रील व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आश्रम वह स्थान है जहां आध्यात्मिक प्रगति सर्वोपरि होती है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। और फिर कहते हैं संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। तो आश्रम वो स्थान है जहां आध्यात्मिक प्रगति या संस्कृति सर्वोपरि होती है, फिर वह चाहे किसी का घर हो या तपस्वी का, चाहे गृहस्थ का हो या तपस्वी का। तो आश्रम मतलब वो स्थान जहां आध्यात्मिक प्रगति जो है सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, और सब सेकेंडरी, और सब दूसरा स्थान, पर पहला स्थान है। इस स्थान पर सबसे प्रमुख, जैसे उदाहरण के लिए आप स्कूल में जाइए, विद्यालय, विद्यालय में एक कोने पे एक छोटा कैंटीन भी बनाया जा सकता है बच्चों को खाने के लिए, टॉयलेट बनाया जाएगा ताकि कोई तकलीफ हो तो बीच में पढ़ाई के बीच में जाके, नहीं तो इधर उधर भागना नहीं पड़े, चिंतित ना हो। पर खाना या वो सब काम करना मुख्य नहीं है वहां। विद्यालय जब लिखा गया है इसका मुख्य उद्देश्य, वहां जो कोई भी आते हैं खाने के लिए नहीं आते या पिशाब पिशाब करने के लिए नहीं आते, मुख्य आते हैं पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई के लिए जो जो अनुकूल है, कहां कहां थोड़ा तकलीफ हो सकता है उसके लिए, खेल कूद करने के लिए, बीच में थोड़ा खेल कूद करने के लिए एक छोटा सा ग्राउंड है, पर मेन चीज है वो विद्यालय। और इसीलिए ऐसा वातावरण, ऐसा अनुकूल परिस्थिति, ऐसा स्थान बनाया गया है कि जहां जो कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहता है इस जगह में आ सकता है, और जब वहां जाते हैं तो वहां प्रगति होने में अनुकूल है, विद्या प्राप्त करने में अनुकूल है। इसी तरह से होटल, कोई भी जगह, एक जगह बनाया गया इसका मतलब है वो कार्य सबसे प्रमुख है और सब दूसरा। इसी तरह से वो स्थान जहां आध्यात्मिक प्रगति सब सर्वोपरि और सब चीज सेकेंडरी, जब वो स्थान हो जाता है वो स्थान कहलाता है आश्रम, नहीं तो वो आश्रम है ही नहीं। आश्रम का मतलब जहां हर एक व्यक्ति जो वहां निवास करते हैं वो आध्यात्मिक प्रगति को सबसे प्रमुख स्थान अपने जीवन में दिया है, उसके बाद शारीरिक जरूरतें, कार्यकलापें, जो भी है वो सब। इसीलिए मंदिर, मंदिर का मतलब क्या, मंदिर का मतलब वहां भी पंखा है, वहां भी बिल्डिंग है, वहां भी लाइट है, वहां भी मार्बल है, वहां भी खाना पकाया जाता है, सब कुछ है वहां भी, पर उसे मंदिर क्यों कहलाता, मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि मंदिर का मतलब ये भगवान का घर है, जो कुछ भी है वो भगवान के सेवक हैं, जो कुछ कार्यकलाप हो रहा है वो उनकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है। ये भावना है, जिसे पार्लियामेंट हाउस के सामने भी, पार्लियामेंट हाउस मतलब क्या, ऊपर तिरंगा झंडा लटका है, इसका मतलब क्या है, ये सरकार का भवन है, जो कुछ भी कार्य होता है सरकार की प्रसन्नता के लिए होता है, सब कुछ सरकारी नौकर हैं, सारा प्रॉपर्टी सरकार के लिए, सरकार का कार्य यहां चल रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट। इसी तरह से अगर घर को, अगर कोई भी जगह आश्रम कहलाना है, तो आश्रम का मतलब है वहां भगवान का आश्रय लेने के लिए सब लोग एकत्रित हुए। आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान की शरण जाना। आध्यात्मिक जीवन का मतलब संपूर्ण वैदिक संस्कृति का उद्देश्य है, धीरे धीरे करके भगवान की शरण जाने में अनुकूल करना। तो उस अनुकूल वातावरण बनाना, उसके लिए जो भी जरूरी है वो बनाना, उस स्थान को अनुकूल वातावरण करना, इसको कहते हैं आश्रम। तो वर्णाश्रम में चार प्रकार के स्तर हैं, चार आश्रम हुए, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट लाइफ, छात्र जीवन, जहां उसका एक ही काम है कि शास्त्रों को अध्ययन करना और नम्र सेवा, दैट इज द मेन टू पर्पस। ब्रह्मचारी मतलब समाज का पैर है वो, गृहस्थ का मतलब पेट, वानप्रस्थ का मतलब हाथ और संन्यास का मतलब सर। इसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण और चार आश्रम। जो आश्रम जो है, ब्रह्मचारी आश्रम का मुख्य उद्देश्य है ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोहितम, सदगुरु, गुरु को प्रसन्न करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और नम्र सेवा को सीखना, बस ये दो प्रमुख चीज है ब्रह्मचारी आश्रम। भगवान के बारे में जानना और भगवान की सेवा, तुच्छ नम्रता पूर्वक तुच्छ सेवा करना, ये ब्रह्मचारी आश्रम। फिर गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में घर चलाना और दान देना, ये दो चीज, क्योंकि गृहस्थ मतलब पैसा कमाना, पैसा, तीनों आश्रम, चार आश्रम में यही एक आश्रम है जहां पैसा कमाना एक छूट, वो छूट दिया गया है, दूसरे लोग नहीं कमाते, न वानप्रस्थ, न सन्यासी, न ब्रह्मचारी, तो उनके लिए घर चलाना, उनके लिए उतना छूट है, और इसीलिए एक अनुकूल वातावरण, वहां स्त्री है और बच्चे हैं, सब कुछ है, लिटिल लाइसेंस फॉर सेंस वेरिफिकेशन, पर द सेम टाइम कमाते हैं पर दान देना। अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमच यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। भगवान गीता में अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थित ही, सन्यासी के लिए तीन बताया गया, अभयम निर्भय होकर अकेला रहना है, उसको अकेला प्रचार करना पड़ेगा, परमात्मा है उसके साथ, डरना नहीं चाहिए, बस उसको कहीं भी भ्रमण करो, सन्यास मतलब भ्रमण करते रहना, अभयम निर्भय होना चाहिए, सत्व संशुद्धिम पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को शुद्ध करने की कोशिश करना चाहिए, एंड ज्ञान योग व्यवस्थित ही, ज्ञान में प्रगति करना चाहिए। फिर गृहस्थ में दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दम इंद्रियों को नियंत्रण करना और यज्ञ, यज्ञ करना। फिर ब्रह्मचारी के लिए स्वाध्याय एंड वानप्रस्थ के लिए तपस्या, तपस्या धीरे धीरे, गृहस्थ जीवन में बहुत आरामदायक हो गया है, अभी धीरे धीरे थोड़ा तपस्या करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना, तो इस तरह से मुख्य चीज कुछ सेकेंडरी बताया गया है, पर प्रमुख चीज है कि भगवान को केंद्र में रख के हम लोग कर रहे हैं। इसको कहते हैं आश्रम जीवन, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो। और जिस जो कोई भी आश्रम में क्यों ना हो, अगर जिस हद तक भगवान को उसने केंद्र बनाकर आध्यात्मिक प्रगति को केंद्र रखा है, प्रमुख प्रमुख दिया गया है, उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। और प्रभुपाद यहां कहते हैं कि आश्रम वह स्थान है जहां आध्यात्मिक संस्कृति सर्वोपरि होती है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन का प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति समान रूप से रहती है। एक्चुअली नहीं समझना चाहिए कि कौन सा आश्रम बड़ा है, गृहस्थ आश्रम बड़ा है कि संन्यास आश्रम बड़ा है कि वानप्रस्थ बड़ा है कि नहीं। यहां तक अखिल प्रभुपाद कहते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि सबों में आध्यात्मिक संस्कृति समान रूप से रहती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई आश्रम में बाधा नहीं है, सब जगह उतना ही अनुकूल है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। कोई भी किसी भी आश्रम में प्रगति कर सकता है, सारे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी एक ही जीवन लक्ष्य परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित है। जिस हद तक उस आश्रम में लक्ष्य यही है कि परमेश्वर का साक्षात्कार के लिए ये स्थान को और वातावरण को अनुकूल बनाए रखे, और जिस हद तक वो वातावरण और स्थान अनुकूल है तो कोई तकलीफ नहीं है। स्थाने स्थित, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्थाने स्थित, कहीं भी स्थान में स्थित हो प्रगति कर सकते हैं। अगर व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुणंदन, उन्होंने स्थित किया है कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य है और अनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो भी अनुकूल चीज है उसको मैं अपनाऊंगा इस स्थान में और ऐसा एक वातावरण बनाऊंगा मैं, और प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो भी भगवान की साक्षात परमेश्वर की साक्षात्कार के लिए प्रतिकूल चीजें हैं वो प्रतिकूल चीजें इस स्थान में इस वातावरण में नहीं होगी। अनुकूल क्या चीज है, जब हम लोग दीक्षा का वचन लेते हैं तो सबसे अनुकूल चीज और सबसे प्रतिकूल चीज को हम लोग त्यागने का वचन देते हैं। प्रतिकूल है मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार। क्यों? क्योंकि आग भी लगा रहे हैं और पानी भी डाल रहे हैं तो आग नहीं लगेगा। तो कम से कम एक शुद्ध और सरल जीवन जीना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन मतलब एक शुद्ध, सरल और अनुकूल जीवन। शुद्ध कब? जब पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अब पाप कर्म जो है ये चार है, स्त्रीय पान द्यूत शून यत्र अधर्म चतुर्विधा। धर्म की मार्ग पे लगे हुए तो अधर्म कम से कम नहीं होना चाहिए। तो स्त्रीय अवैध स्त्री संबंध, पान मद्यपान, स्त्रीय पान द्यूत और शून मांसाहार। बोले यत्र अधर्म चतुर्विधा, तो अगर उसे आश्रम बनाना है हमको तो एक अनुकूल वातावरण, मतलब कम से कम ये चार चीज यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुकूल वातावरण नहीं है फिर। तो इसीलिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कम से कम ये नियमों को पालन करने से मनुष्य जीवन में आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद भक्ति, कम से कम मनुष्य जीवन हो गया। और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अनुकूल चीज क्या, नियमित रूप से भगवान की, भगवान का नाम स्मरण, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातचित सर्वे विधि निषेध्यास्युर एदयोरेव किंकरा। सारे वैदिक ग्रंथों में जितने सारे रीति रिवाज, जितने सारे नियम बताए गए हैं, उनका अंततः उद्देश्य क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु। जो हमेशा भगवान का स्मरण रहे और जितने सारे निषेध बताए गए ये मत करो वो मत करो, इसका उद्देश्य ये है कि विस्मर्तव्यो न जापचित, कभी भगवान को हम भूले नहीं। सर्वे विधि निषेध, जितने विधि और निषेध है, एतयो हो एव किंकरा, ये दोनों के किंकर हैं, ये दोनों के सबऑर्डिनेट, उनके ही नीचे आते हैं सब, उनका उद्देश्य यही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सारे ये ज्ञान दे दिए और रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत लिखा है, उपदेश अमृत, उपदेशों का सार, और वहां भी वो लिखते हैं क्या क्या अनुकूल है और क्या क्या प्रतिकूल है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगति आगा ततो वृत्ति श्रद्धिर भक्ति प्रसिद्धि, भक्ति में प्रगति करने के लिए छह चीज अनुकूल है, इसको स्वीकार करो। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो निमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति, छह चीज प्रतिकूल है जिसको धीरे धीरे निकाल डालो नहीं तो विनाश कर देगा। तो अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है ये अच्छी तरह से जानकर शास्त्रों का अध्ययन, प्रसाद का सेवन, भगवान का नाम स्मरण, भक्तों का संग, ये सब अनुकूल चीजें हैं, तो इसको अपनाना और जो प्रतिकूल है उसको धीरे 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 उस वातावरण से उस स्थान से दूर रखना। और तब इतना अनुकूल हो जाता है वातावरण कि जो व्यक्ति उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं रखता वो भी अगर उस स्थान पे और उस वातावरण में आ जाए तो कम से कम उसको लगेगा कि इस स्थान में मैं और कुछ करना नहीं चाहता, ये स्वाभाविक है, हमने देखा है, हमने अनुभव किया है। और जो लोग उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग आएंगे नहीं उस जगह, आपको उनको ना आने की बोलने की जरूरत नहीं है, वो आना ही बंद कर देंगे। जब एक आश्रम का वातावरण बन जाए तो जिसको आश्रम में इंटरेस्ट नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, कम से भूल के भी वो जगह में नहीं आएगा। आपको वो ऐसे व्यक्तियों को दूर रखने की कोई जरूरत नहीं है, वातावरण ऐसा बनाओ कि वो अपने आप दूर रहेगा। जो आदमी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है भूल के भी बार एंड रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, उसको मालूम है कि ये अनुकूल नहीं है, न ये स्थान है न ये वातावरण अनुकूल है, तो भूल के भी वो नहीं जाएगा। इसी तरह से ऐसे लोग जिनको आध्यात्मिक प्रगति में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका तो यह नहीं, वो आ जाएगा तो क्या बोलो, कोई बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा वातावरण स्थान को और वातावरण को अनुकूल बनाओ तो जिसको वो अनुकूल नहीं है वो अपने आप दूर रहेंगे, क्योंकि उनको इस चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं। तो इस तरह से और ऐसा वातावरण से आध्यात्मिक प्रगति जो है बहुत ही आसान हो जाता है, जिस तरह तक वो वातावरण बनाएंगे रखेंगे। मैं नासिक गया, नहीं नासिक नहीं, गोवा, गोवा में विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा हॉल है, तो हॉल में मैं वहां बैठा हुआ था और वहां देखा मैंने बहुत सुंदर एक तीन शब्द लिखे हुए हैं, वहां क्या लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म जो है रक्षति आपकी रक्षा करेगा, कब, रक्षितः, जो धर्म को धर्म की रक्षण करता है धर्म उसका रक्षण करेगा। ये सोचने वाली बात है, आप सोचिए, जो धर्म की रक्षा करता है उसको धर्म रक्षा करेगा, तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। जैसे एक शेतकरी किसान है, किसान क्या बोलते हैं, अच्छा से जमीन में उपजाऊ कुछ डाला है, सब कुछ अनुकूल क्या बोलते हैं, हाँ पीक डाल दिया है, डालने के बाद बहुत पैसा वो खर्चा करता है एक कुंपण क्या बोलते हैं उसको, फेंस बनाने के लिए। अगर वो बोलेगा अरे यार फेंस में क्यों खर्चा करना है, वो सब कांटा डागाना है, वो खंबा लगाना है, वायर बांधने का है, इतना क्यों खर्चा करे, अगर वो फेंसिंग को अच्छी तरह से अच्छा से नहीं बना के रखेगा तो वो फेंस उसे संरक्षण नहीं करेगा, एक दिन रात को सोया रहेगा तो कोई गाय आ गया, बैल आ गया, बकरी आ गया, कुछ भी आ गया, हाथी आ गया, पागल हाथी, सब कुछ नष्ट कर देगा। तो अगर उस कुंभन को अच्छा से संरक्षण करके रखेंगे तो हमको जब जरूरत पड़ेगा तो वो कुंभन हमारी रक्षा करेगा, उस उपज की रक्षा करेगा। इसी तरह से अगर हम बड़े ध्यान पूर्वक बताए हुए रीति रिवाज नियमों को अच्छी तरह से पालन करेंगे तो वो वातावरण और वो स्थान हमारी भक्ति की रक्षा करेगा। पर अगर हम लोग ढीले पड़ जाएंगे, नहीं नहीं ये नहीं भी चलेगा, चलेगा इसमें थोड़ा ढीला पड़ जाएंगे चलेगा, तो उस हद तक वो ऐसा वातावरण या ऐसा स्थान हमें रक्षा नहीं करेगा। यानी उस हद तक हमारी भक्ति के पर थोड़ा बाधा आने की संभावना है। तो हमारा उद्देश्य यह है, हमारा कार्य यह है कि एक अनुकूल ऐसे वातावरण और अनुकूल स्थान में निवास करना, अनुकूल वातावरण बनाए रखना, आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम। और आश्रम का मतलब फोकस, फोकस क्लियर है कि आध्यात्मिक प्रगति यहां मुख्य प्रमुख स्थान है, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। प्रायोरिटी क्लियर है, पहले भगवान की सेवा, नेक्स्ट हमारा आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब शास्त्रों का अध्ययन प्रमुख स्थान देना चाहिए, नम्र सेवा प्रमुख स्थान देना चाहिए। पैसा वैसा यहां नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी का कैसा बैंक अकाउंट, गृहस्थ जीवन, तो ये नियम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऑफकोर्स प्रमुख स्थान आध्यात्मिक प्रगति, भगवान का शरण लेना। नेक्स्ट हमारा वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, उस आश्रम के अनुसार क्या प्रायोरिटी है उस आश्रम को बनाए रखने के लिए, उसके बाद सब दूसरी चीज। तो जिस हद तक वो वातावरण बनाए के रखेंगे उस हद तक सद्गुरु के जो हमने शिक्षा प्राप्त की है उसे अपना के जीवन का जो लक्ष्य है परमेश्वर का साक्षात्कार, वो अनुकूल हो जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा। और जिस हद तक ये अनुकूल वातावरण नहीं बनाएंगे, आश्रम नहीं बनाएंगे, स्थान और वातावरण को अनुकूल नहीं रखेंगे, उस हद तक आध्यात्मिक जीवन की प्रगति, परमेश्वर का साक्षात्कार और सद्गुरु की जो आज्ञा है उसको पालन करने में उतना ही मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से व्यासदेव ने अपने नारद मुनि से श्रवण करने के बाद उन्होंने ध्यान किया, अच्छा उनका इंस्ट्रक्शन ये है, अभी मुझे एक ग्रंथ की रचना करनी है, एक ऐसा शुद्ध ग्रंथ, एक ऐसा शुद्ध ग्रंथ रचना करना है, तो एक ऐसा स्थान मुझे ढूंढना है जो इस कार्य के लिए बहुत अनुकूल हो, एक ऐसा वातावरण बनाना है जो इस कार्य के लिए बहुत अनुकूल हो। और इसीलिए उन्होंने तुरंत नारद मुनि के जाने के बाद सरस्वती नदी के तट पर, ब्रह्मनुद्याम सरस्वत्याम आश्रमे पश्चिमे तटे, पश्चिम तट पर जो सबसे अनुकूल है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ऐसे कार्यों के लिए, उसको चुना। और चुनने के बाद सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन, सत्रवर्धन मतलब कार्यों को प्रोत्साहित करने वाला, ऋषियों का कार्य, ऋषियों का कार्य क्या है, ज्ञान देना, तो इसीलिए वो कार्य कर रहे थे। और क्योंकि उन्होंने एक अच्छा अनुकूल स्थान चुना और नारद मुनि से सुना था, उसको लिखा, आज 5000 साल के बाद भी आज हम उसका फायदा उठा रहे। वो स्थान, वो वातावरण और उसका रिजल्ट, ये उसका रिजल्ट है। उन्होंने एकदम ऐसा वातावरण में गए और उन्होंने ऐसी रचना की ग्रंथों, अब क्या किया कल हम सुनेंगे, और अनुकूल वातावरण स्थान बना दिए, पर उसके बाद किया क्या वो वह महत्वपूर्ण है। स्थान और अनुकूल वातावरण सब अनुकूल हो गया, वहां जाके सो गए, फर्स्ट क्लास सत्वगुण है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जंगल में गए और सो गए बस खर्राटा मार के नहीं, उसके बाद क्या किया ये भी बड़ा महत्वपूर्ण, कल वो हम चर्चा करें। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न, संशय, क्लैरिफिकेशन?
यस
प्रभु जी, जैसे आज के श्लोक में विशेष करके दो चीजें अपने बताई, एक है अनुकूल स्थान और दूसरा है अनुकूल एनवायरमेंट
वातावरण।
और ये हर स्थिति में लागू करता है, एक घर, एक कम्युनिटी, एक गांव, देश, इस स्तर पे। कोल्हापुर में अभी जब मंदिर आ रहा है और मंदिर के आजू बाजू में 15-20 भक्तों ने अपना अपना मकान बनाने के लिए जगह भी दी है, तो ये कम्युनिटी तो ये दो चीजें हम देख रहे हैं, ये दो चीजें उधर लागू करके एक अच्छा कम्युनिटी कैसे उभरा सकता है, इसके लिए क्या क्या ऑन इंडिविजुअल बेसिस व्हाट वी हैव टू कंसिडर और फिर एक टेम्पल के बेसिस पे व्हाट वी हैव टू कंसिडर। क्योंकि इतने दिन तक हर एक के घर में अपने अपने रीति से, अपने अपने अर्थ विग्रह से, इतना उधर अभी मंदिर आने के बाद कैसा होना चाहिए,
दो ही चीज, अनुकूल स्थान, अनुकूल वातावरण। जहां ज्यादा भक्त लोग एकत्रित हैं वहां भक्ति करने में अनुकूल हो जाता, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल सुवर्जन। तो एटलीस्ट युग धर्म जो है हमारा संकीर्तन है, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेधसा, और संकीर्तन संघ में आकर कीर्तन करना बहुत ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल है, संघ में रहना, क्योंकि अकेले में करना मुश्किल है भक्ति। तो वो वातावरण बनाने के लिए जो भी अनुकूल है अपने अपने यथाशक्ति, वी हैव टू कंसिडर दैट, बस दैट सिंपल। जहां तक कम्युनिटी का सवाल है, हर एक का जो मनोवृत्ति, मेंटल एटीट्यूड, कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं उपदेश अमृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। हमारी भावना क्या है, अगर वो भावना एकदम सही है फिर वो वातावरण का पूरा हम लोग फायदा उठा सकते हैं। वो एटीट्यूड अगर नहीं है, थोड़े दिन पहले कल्चर के ऊपर महाराज राधानाथ स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे, भक्ति चारों स्वामी और राधानाथ स्वामी महाराज बैठे हुए थे, कल्चर के ऊपर डिस्कस चल रहा था, संस्कृति के ऊपर। तो उन्होंने कहा कल्चर इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट एंड कल्चर इज ऑल अबाउट एडवांसमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ वन सेल्फ एंड ऑफ अदर्स, बस ये संस्कृति है। और लोग बोलते हैं ना सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभी दिल्ली में कोई नेशनल गेम्स हो गया तो ऑल कल्चरल प्रेजेंटेशन, ऑल कल्चरल मतलब क्या, और राजस्थानी वाला कुछ पगड़ी पहन के आएगा डांस करेगा और पंजाबी लोग आएंगे भांगड़ा करके जाएंगे, तो लोगों को लगता है ये कल्चर है। कल्चरल मतलब उनका खाना पीना, रहना सहना, कपड़ा कैसे पहनते। बट रियल वैदिक कल्चर इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, हाउ टू खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीज तो करना जरूरी है जब तक शरीर है, पर युक्त आहार विहार से, युक्त कर्म से चेष्टा, युक्त स्वप्नावबोध से योगो। तो कल्चर मतलब उसको कैसा किया जाए, रिफाइंड वे, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब सोना है,
क्या करना है, सब कुछ, आहार निद्रा भय, कैसा संरक्षण करना है, कैसा धन एकत्रित करना है, धन अर्जन करना है, करना तो है सबके लिए, और कैसा करना है कैसा नहीं करना है, इस तरह से प्रोक्रिएशन कैसा करना है कैसा नहीं करना है। और कल्चर इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब हर एक चीज को और हर एक व्यक्ति को कैसा सम्मान दिया जाए, हर एक को सम्मान, अपने आप को तुच्छ मानते हैं तो सबको सम्मान देना, अमानिना मान देना। और सम्मान कब देंगे, जब हम देखेंगे कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, और जब तक वो नहीं है तो फिर हमारा क्या बोलते हैं, यंत्र मंत्र बुद्ध वो सब करेंगे, हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पर एकदम किसी लोगों को एकदम ऐसा व्यवहार करेंगे हमारे व्यवहार दूसरों के प्रति के उस जीव में या उस चीज में या उस व्यक्ति में हम भगवान के अंश को देख नहीं रहे। क्यों हम लोग प्रणाम करते हैं वांछा कल्पद एक दूसरे को, भगवान आपके हृदय में भी निवास कर रहे हैं, तो ये मंदिर है, चाहे आप जानो या नहीं जानो। हर एक चीज को भी, जैसे चटाई हो या कुछ हो तो लात नहीं मारते हम लोग, उसको हाथ से पकड़ के रखते हैं, और लात पैर लग गया तो भी ऐसा, इसका मतलब क्या है, सम्मान दे रहे हैं, हर एक चीज को सम्मान देना, दैट इज कल्चर। ये सुसंस्कृत व्यक्ति मतलब सबको सम्मान देता है, क्योंकि सबको भगवान से जुड़े हुए देखता है। तो जब तक वो भगवान से संबंधित चीज नहीं है तो फिर वो सिर्फ पैकेजिंग है, एक्सटर्नल पैकेजिंग है, पर अंदर वो मेन सब्सटेंस ही नहीं है, दैट्स नॉट कल्चर। और कल्चर में म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर सब कुछ है। कल्चर मतलब रिफाइंड, रिफाइंड मतलब शुद्ध, और शुद्ध तब होगा जब परम शुद्ध भगवान को प्राप्त करने के लिए जो अनुकूल है। तो अभी म्यूजिक, अभी हमारे मंदिर में दामोदर अष्टक होता है, तो दामोदर अष्टक में कोई वीणा बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई मृदंग, कोई करताल, कोई क्या कुछ, बहुत ये सब जितना चीज अनुकूल है भगवान की भक्ति में फोकस होने के लिए। अगर सिर्फ गा रहे हैं और ताल नहीं है और राग नहीं है तो भी सुनेंगे, जिसको भक्ति है वो तो देखेगा कि हरिनाम ले रहा है, पर साधारणतः लोग उतना आकर्षित नहीं होंगे। तो आकर्षक होने के लिए उसको रिफाइंड वे, ड्रामा कर रहे हैं, चार लोग ऐसे खड़े हो गए, प्रैक्टिस नहीं किया कुछ नहीं, ऐसा नाटक कर दिया, ठीक है भक्त लोग हाँ अच्छा अच्छा समझते हैं बेचारे, पर पब्लिक को अगर आकर्षण करना है भगवान के प्रति तो रिफाइंड बहुत सुंदर से करना है। पर उसका उद्देश्य क्या है, किसी न किसी तरह से भगवान की आकर्षित करना। सो मंदिर एक झोपड़ी जैसा खड़ा भी कर दिया तो मंदिर है भगवान के लिए, पर कितना सुंदर आर्ट आके चाहिए, लोग मंदिर देखने जाते हैं। अभी इसमें बंबई में येलो पेजेस में देख रहा था, सारा टेंपल्स इन बॉम्बे, सिद्धिविनायक टेंपल, महालक्ष्मी टेंपल, हरे राम हरे कृष्णा जुहू, क्यों, क्योंकि लोग देखने जाते हैं उसको, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल मार्बल, ये वो। इस तरह से संस्कृति मतलब वॉट एवर आर्ट आर्किटेक्चर, उसको भी अगर भगवान के लिए अनुकूल बनाया जाए तो दैट्स द होल आइडिया। रिस्पेक्ट एंड आध्यात्मिक प्रगति, ये दो चीज केंद्र होने के लिए, तो वो अनुकूल वातावरण बनाए रखना वो बहुत जरूरी है। वो स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी लिविंग, कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को का योगदान जो है उसको एप्रिशिएट करता है और उसको रिस्पेक्ट। इफ देर इज नो एप्रिसिएशन एंड नो रिस्पेक्ट फॉर ईच वन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, देन दैट कम्युनिटी विल ब्रेक डाउन। वर्णाश्रम सिस्टम मतलब क्या, ठीक है जैसा यहां प्रभुपाद लिखते हैं, इनमें से कोई भी कर्म, कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सारे सन्यासी अपने व्यावहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान के दृष्टि से देखे जाते हैं। किसी को हम ज्यादा सम्मान देते हैं क्योंकि औपचारिक रूप से वो व्यक्ति ज्यादा विरक्त है, इसलिए उनको हम ज्यादा सम्मान देते हैं, पर एक्चुअली आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई भी आश्रम में रहकर उतना ही प्रगति किया जा सकता है, पर यह औपचारिकता है, संन्यास नहीं, प्रैक्टिकली उसने रिनाउंस किया है उस चीज को जो प्रतिकूल है, उसको त्याग किया है, तो उसको हम सम्मान देते हैं। पर हर एक व्यक्ति को उस स्थिति में सम्मान देना और उसका जो योगदान है उसको एक्सेप्ट स्वीकार करना, ये एक्चुअली रहस्य है कम्युनिटी को। और जब तक वो नहीं है तब तक वो कम्युनिटी पूर्ण रूप से प्रगति नहीं करता। दैट मेक सेंस? आई डोंट नो, इट्स टू ब्रॉड ए क्वेश्चन। Accepting and respecting a person for what he is contributing. Bhakti Tirtha Maharaj char instructions dete hain for community living. I don't remember everything, abhi yaad nahi mujhe. Usme hi kehte hain, every time you meet another person, treat him as if he is the whom you respect and love the most. How would you respect, how you treat him, treat every individual like that. जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान देते हो, प्रेम करते हो, उस व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करोगे, ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है। तब that is the secret of community living. Hate the sin, not the sinner. हर एक का अपना अपना बद्ध अवस्था है, हर एक अपने अपने अनर्थों से लाचार है, उसमें भी किसी तरह से भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोष देखना मतलब हमारे अंदर भी वही है, इसलिए हम उसी चीज को देखते हैं। तो ये भावना एटलीस्ट रखना है और बिट्राई तो एटलीस्ट नॉट डिसरेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। इसीलिए उसका उसको कैसे हाउ टू ट्रांसफर बाय टू, एटलीस्ट व्हाट आई रियलाइज टू थिंग्स, वन इज बाय हियरिंग, रेगुलर हियरिंग, बार बार सुनना कि एक वैष्णव कितना महान है, कितना रेयर, मनुष्याणाम सहस्रेशु, हजारों में से कोई एक है जो भगवान की शरण गया है, तो भगवान ने उसे स्वीकार किया है, बस वो वैष्णव है, तो हम किसी तरह से मानें। तो बार बार सुनना वैष्णव की महानता क्या है, कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो वैष्णव है, भगवान ने उसे स्वीकार किया, वो हरिनाम लेता है एक। और दूसरा एटलीस्ट एटिकेट पार्ट, वैष्णव एटिकेट इसीलिए बताया गया है, भावना नहीं है पर फिर भी हम लोग प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरु पतिता नाम पावने भ्यो, हालांकि अंदर से लगेंगे तू पतित है, मैं तेरा उद्धार करने के लिए प्रणाम कर रहा हूं। मन में कुछ भी सोचो पर एटलीस्ट मुंह में और व्यवहार में लाना नहीं चाहिए, ये संस्कृति है, दिस इज कल्चर। कल्चर मीन्स जैसे दुर्योधन में और उनके झगड़ा होता था, पर शाम के बाद they were meeting and you know there is a particular place to do that, after that restrain, कल्चर मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि एकाएक हम 100% शुद्ध हो जाएंगे तो फिर यहां आए क्यों, कोई यहां शुद्ध भक्त है नहीं इसलिए तो यहां आए हैं। पर एटलीस्ट कल्चर्ड इन अ कल्चर्ड सोसाइटी देर इज ए वे टू डील विथ इट। द ग्रेटनेस ऑफ ए सोसाइटी इज नॉट दैट प्रॉब्लम्स डोंट कम बट हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम्स इन ए मेच्योर वे। एक संस्था की महानता यह है कि वहां समस्या नहीं आएगी, ये मूर्खता है ऐसा सोचना यहां सब वैष्णव यहां कोई समस्या है। समस्या 100% आएगी क्योंकि ये भौतिक संसार में है हम लोग और हर एक व्यक्ति इसके अंदर काम क्रोध के लोभ में वश में आया ना आ तो जाएगा कभी ना कभी, हमेशा है कभी ना कभी नहीं होता है एक्चुअली उसके वश में, पर आ भी जाएगा अगर नहीं भी है तो समस्या 100% होने वाली है। पर उस समस्या को कैसे एड्रेस करते हैं, कैसा उसको हम लोग संभालते हैं, ये एक संस्कृति का लक्षण है। दिस इज ए कल्चर। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी वन डिवोटी, सो मेनी डिवोटीज हैड प्रॉब्लम्स हाउ दे वर डेल्ट विथ इन ए वैष्णव सोसाइटी, दैट इज द डिफरेंस। इन ए अनकल्चर्ड सोसाइटी जो असंस्कृत है वो असुसंस्कृत है, वो देर इज सिंपली रिलीज बस विदाउट सीइंग टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। बट इन ए वैष्णव सोसाइटी देर इज अ वे टू डील विथ प्रॉब्लम्स आर देयर बट यू डील विथ इट इन अ वेरी प्रॉपर वे, इन ए कल्चर्ड, इन ए मैच्योर वे, सो दैट लीस्ट डैमेज इज डन एंड एवरीवन प्रोग्रेसेस टू स्पिरिचुअल लाइफ। That is a mature society. Problems will be there.
लेकिन आपने कि मन में कुछ हो एक्सटर्नली बाहरी रूप से हम लोगों ने अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन मन में कुछ भी हो तो वो बाद में आता है फिर और एक्शन ये से पूरा करना चाहिए। हम लोग मदद कर रहे हम लोग प्रणाम कर रहे हैं फिर भी लोगों को समस्या आने वाली है कर रहे
हैं।
अभी
माता
जी के बारे में अगर मैं
चलेगा एटलीस्ट दूसरों को तो लगेगा कि चलो अभी तक ठीक है। अगर नहीं है जो अंदर सो बाहर, साहब गाली देने लगू पब्लिक के सामने में यहां, बोले ये वैष्णव लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, एटली जो नया भक्त उसको तो ठीक है भाई सम्मान प्रणाम तो करो, उनको क्या मालूम अंदर की क्या बात है, आप दोनों को मालूम है, आप दोनों में तो कम से कम रखो, पूरे समाज को पढ़ा क्या देने की जरूरत है। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विल बी देयर। एक बार राधाना स्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने अच्छा बोला, एटलीस्ट डोंट किल ईच अदर, मां जान से मत मार डालो कम से कम। फिर बोले के बोले कि कम से कम पब्लिक में सबके सामने झगड़ो मत। फिर बोले कि वो भी जितना हो सके उसको टॉलरेट करो, और एक्चुअली उसके बाद उस व्यक्ति से प्रेम करो। इट इज एब्सोल्युटली फूलिश। गोविंद प्रभु आजकल अभी वो महाभारत पढ़ रहे हैं, वो सारा महाभारत में डीप में जा रहे हैं, कल्चर उसमें है बोल के। तो वो बता रहे थे कि भीम और दुर्योधन, भीम और युधिष्ठिर में कभी कभी भीम को इतना गुस्सा आता था, भीम बोलता था युधिष्ठिर को कि तू ब्राह्मण होके पैदा होना था, तू क्षत्रिय वंश में क्यों आ गया, मैं तेरा हाथ, और कोई होता ना अगर तू युधिष्ठिर मेरा बड़ा भाई नहीं होता ना, तेरा हाथ काट के मैं फेंक दिया होता, तू क्षत्रिय कैसे हो गया, तू ब्राह्मण होना था। नहीं नहीं इसको नहीं करना, ऐसा नहीं धर्म के बाम पर। तो कितने बार भीम को, एक्चुअली आप पढ़ेंगे तो भीम पांच पांडव हम कहते हैं कि ऐसे अलग ही नहीं हुए हो, पर फिर भी नारद मुनि ने बोला देखो एक ही चीज द्रौपदी के साथ तुम लोग रह रहे हो, और क्या बोलते हैं गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो कुंती महारानी ने बोला, नारद मुनि ने बताया शंड और उपसंद का उदाहरण देकर, कि उसको बांट के लेना, यश जो आएगा उसको बांट के लेना, नहीं तो झगड़ने लग जाओगे। तो हम देखते हैं कि पांच पांडव मतलब कभी अलग नहीं हुए, पर उनके बीच में एक बहुत झगड़ा था। भीम को लगता था क्या क्यों छोड़ना, भी थोड़ा मेरे को हां बोल, इन सबको मैं थोड़ा अपना मन की बात बताऊंगा, सहन करके बैठता था वो। ऐसा नहीं कि पांच पांडव इतने प्रेम से हमेशा हरी बोलते, अंदर अंदर उनका भी झगड़ा था। एटलीस्ट महाभारत में, भागवतम में नहीं है। भागवतम में सिर्फ उनका मेन चीज सार दिखाया गया है। पर फिर भी जो भी था, पर जहां तक भगवान की सेवा का सवाल था और धर्म की थे, उसमें कुछ भी अंदर हो, पर फिर भी हम पांच हैं और भगवान की सेवा में एक है। तो जब पांच पांडवों के बीच में ऐसा था कि हम कौन से महात्मा लोग हैं, रहेगा। हर एक का सोचने का तरीका अलग है, अनेक का बोलने का तरीका, हर एक का अपना अपना बैगेज, पुराना थैली वैली लेके आया पिछले करोड़ों जन्मों से, और कर्माणि निर्वहति किंतु जब अभी कर्म शुद्ध हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम शुद्ध भक्त है, अहंकार नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, आता है 100% आता है। पर एटलीस्ट जो चीज उसको भड़काता है उस चीज से दूर रहो। अगर उसके पास बहुत ज्यादा पास गया तो शायद बोल ही दूंगा मैं और कुछ कर ही दूंगा, तो दूर से प्रणाम करके रहो। एटलीस्ट लीस्ट डैमेज टू वनसेल्फ, टू अदर्स एंड टू पब्लिक एट लार्ज। पढ़ने समझ में आता है। बहुत गुस्सा आता था युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, भीम को, अर्जुन को भी कभी कभी बुरा लगता था, क्या भाई है हमारा, और इनको भी उनके ऊपर ऐसा लगता था इतना खाता है। तो फिर भी नहीं, वो उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसी है। कुछ चीजों में भी काम कर सकता है, कुछ चीजों में उसको युधिष्ठिर को सामने भेज सकता, ऐसा है। बट ओनली थिंग इज फॉर ए हायर पर्पज ऑल अदर नॉर्मल थिंग कैन बी सैक्रीफाइस, एक उच्च कार्य के लिए, और वो क्या है, कृष्ण भावना। कृष्ण भावना का प्रचार होना है। करोड़ों लोग बिना कृष्ण भावना के तड़प रहे, और किसी न किसी तरह से हम लोग इतने लोग कृष्ण भावना को प्राप्त किए हैं, और लोग एक कृष्ण भावना की संस्था को देखते हैं और देखते हैं, अरे सब जगह लाया, छोटे छोटे चीज के लिए लोग झगड़ते, भाई भाई में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, ये सब में झगड़ा होता है, पर यहां भाई भाई न होते हुए भी गुरु भाई गुरु बहन भी इतना प्रेम, यानी कृष्ण भावना कुछ तो काम करता है। तो कम से कम उतना ये करने के लिए, एक आदर्श उदाहरण देने के लिए, थोड़ा तो सहन करो, तपस्या है। ऑफकोर्स आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से ऐसा नहीं कि अंदर से कुछ है और बाहर से हाँ हाँ, ऐसा नहीं, और ना केवल ऐसा कि क्या बोलते हैं, अंदर से कुछ है और बाहर से मैं तो एकदम सीधा सीधा, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल एकदम ऐसा, देयर इज अ वे टू डू इट। हमें कुछ उनको कहना है, कुछ समझाना है, एक तरीका होता है, एंड दैट इज कल्चर, किस तरह से उसे बताया जाए, और ट्रेनिंग, उसको इसके लिए ट्रेनिंग भी जरूरत है। जितना एक वैष्णव कल्चर में ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग मतलब क्या, कि ऑल द प्रॉब्लम्स आर डेल्ट विथ लीस्ट पॉसिबल डैमेज टू वनसेल्फ, टू अदर्स, टू सोसाइटी एंड टू वर्ल्ड एट लार्ज, दैट इज ए कल्चर सोसाइटी। प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी देयर, बट हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम विद द लीस्ट डैमेज। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उस केशव कश्मीरी को हराया, पर जब हराया तो सब हंसने लगे, सारे शिष्य उनके सारे अनुयायी, उम्र में बहुत बड़े हैं, बड़े विद्वान हैं ये, सो ही केप्ट हिज डिग्निटी, बट एट द सेम टाइम कम्युनिकेटेड हिज पॉइंट दैट यू आर अ फूल, You don't know anything, don't think you have to be a big scholar. He don't even know the basics. He communicated the point, but maintained his dignity. That is a very important point. How to maintain the dignity, yet remove the problem. That is a way of doing it. Jaisa, ek surgery karna hai. Surgery mein some problem is there, tumor is there. Tumor ke aaspaas mein jitna aatra usko bhi agar khila ke nikal diya, mari gaya aadmi. Operation successful, patient dead. मैंने बोल दिया बस, मेरा हृदय में जो भी था मैंने बोल दिया, क्लियर कर दिया बस, पूरा सोसाइटी भी क्लियर हो गया हो बस. आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड, उसे फायदा क्या? ऑपरेशन सक्सेस हो रहा है और पेशेंट जिंदा होना चाहिए. तो डू इट इन ए वे, जितना जरूरी है उतना ही निकालना, और ऐसा समय में कि ऐसा तरीके से कि वो भी खुश, हम भी खुश, और सब सर्वे सब भी, परिवार भी खुश कि हमारा पेशेंट वापस आ गया ठीक ठाक सही सलामत. दैट इज द होल, दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, मैच्योरिटी, सो दैट वी नो हाउ टू डू इट. एक्सपर्ट डॉक्टर नोस हाउ मच मेडिसिन, व्हेन टू गिव, हाउ टू गिव एंड व्हाट नॉट टू डू. दैट इज एक्सपर्टीज, दैट इज मैच्योरिटी. That's what training Prabhupada wanted. Abhi sanstha ho gaya, but now the boil the milk. That means that let devotees be more mature, more trained, and by their own behavior and by their words, set an example of how to deal with it. बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना आसान बोलना बड़ा आसान है इसको, पर एक्चुअली हमारे जीवन में जब आता है तो डील विद इट बहुत मुश्किल है. पर ताम तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करना ही है. देयर इज नो अदर वे. यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरं सह अमृतत्वाय कल्पते. अगर भगवत धाम जाना है तो हमको ये सब सहन करना है, और जो भगवान को प्रसन्न करता है वही हमको करना है, वही तो तपस्या है. एकादशी के दिन निर्जल करना बहुत बहुत बड़ी तपस्या नहीं है. तपस्या का मतलब क्या? आराधितो यदि हरि तपसा तो तपस्या. भगवान को क्या प्रसन्न करता है? हरितोषण. क्या भगवान प्रसन्न होंगे ऐसा करने से? नहीं प्रसन्न होंगे तो हम नहीं करेंगे, उसको सहन करना. और कभी कभी इच्छा नहीं है पर फिर भी हम करते हैं, क्यों? क्योंकि यही भगवान को प्रसन्न करता है. दैट इज रियल तपस्या. तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम. दैट इज दिव्य तपस्या. सत्वम शुद्धि जो हृदय को शुद्ध कर सकता है. ओके, शिल प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. हाय गोप्यमान. Thank you.